अब तो आस्था के लिए ये साफ हो चुका था कि काफी दिनों से वो इसी बात के बारे में सोच रही थी कि अगर ब्लैक डेविल उसे ढूंढ रहा है, यानी सम्राट उसे ढूंढ रहा है, तो उसने उसे कहाँ देखा होगा। लेकिन अब आस्था को अच्छी तरह से समझ में आ चुका था कि उसने उसे ऑस्ट्रेलिया में देखा था। उसने एंजल को कहा था, भाभी हमारी काफी बड़ी टेंशन दूर हो गई है, काफी दिनों से हम यही सोच रही थी कि आखिरकार इसने हमें कहाँ देखा है, इसी वजह से यह हमें पागलों की तरह ढूंढ रहा है, अरमान सिंघानिया को अपने सामने झुकाने के लिए। लेकिन अब हमें समझ में आ चुका है कि असल में ये हमें ही ढूंढ रहा है, और इसे अभी तक ये नहीं पता कि असल में हम कौन हैं। जैसे ही आस्था ने ये कहा, वैसे ही एंजल भी हल्का सा मुस्कुरा दी। तब तक रौनक साथ साथ वंशिका और राधिका जल्दी से बहाने से उनके पास जाने लगे थे ताकि उन्हें वहां से हटा दें और आस्था का रास्ता पूरी तरह से सम्राट तक पहुंचने के लिए साफ हो जाए। वहीं सम्राट ने अपने कुछ आदमी चारों तरफ फैला रखे थे ताकि रॉकी या कोई भी कुछ भी संदिग्ध लगे तो तुरंत उसके बारे में इन्फॉर्म कर दे। लेकिन जैसे ही आस्था जानबूझकर सम्राट के एक आदमी के सामने आई और उसने अपने ऊपर ड्रिंक गिरने का नाटक किया। अब जैसे ही उस आदमी ने आस्था को देखा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, क्योंकि ये तो वही लड़की थी जिसे उसका बॉस पागलों की तरह ढूंढ रहा था, क्योंकि उसके बॉस के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उस लड़की यानी आस्था के कुछ चित्र बनवाए गए थे। और अब जैसे ही उसने वे चित्र देखे तो उसे यकीन हो गया कि लड़की यही है। जल्दी से दौड़कर अपने नंबर सम्राट की गुड बुक में बढ़ाने के लिए वो तुरंत उसके पास गया और जाकर बोला, सर आपके लिए खबर है, जिस लड़की को आप ढूंढ रहे थे वो लड़की इस वक्त क्लब में मौजूद है। ये सुनते ही सम्राट ने तुरंत अपनी काली आंखों से चश्मा उतारा और अपने गार्ड को इशारे से इधर उधर देखने का इंस्ट्रक्शन देने लगा। और जैसे ही उसने ये देखा कि आस्था जानबूझकर अपने ऊपर थोड़ी सी ड्रिंक गिराए हुए थी ताकि वो ड्रिंक साफ करने का नाटक करे और सम्राट को बिल्कुल भी ना देखे, लेकिन सम्राट उसे देख सके। अब सम्राट पागलों की तरह आस्था को देखता ही रह गया। उसने एंजल को भी वहां देखा तो उसे लगने लगा कि शायद ये लोग यहाँ पार्टी करने के लिए आए हैं, क्योंकि उस वक्त भी दोनों दोस्त एक साथ ही थे। ये सोचकर उसकी आंखें हैरानी से और भी बड़ी हो गईं और उसके चेहरे पर हंसी और खुशी के मिले जुले भाव आ गए। कब से उसका दिल आस्था को पागलों की तरह देखने को बेताब था और अब वो तुरंत ही उसकी ओर बढ़ने लगा। वहीं अब सभी लड़कियां इशारों इशारों में आस्था को बताने लगीं कि वो तुम्हारी ओर आ रहा है, क्योंकि सभी इस तरीके से सम्राट की हर मूवमेंट पर नज़र रखे हुए थीं ताकि सम्राट को बिल्कुल भी एहसास ना हो कि वो लड़कियों की नज़रों के घेरे में है। तभी जैसे ही आस्था लगातार टिश्यू से खुद को साफ कर रही थी, तब तक सम्राट आकर तुरंत वहां खड़ा हो गया। उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और आस्था की ओर बढ़ाते हुए बोला, लीजिए इससे साफ कर लीजिए। आस्था ने तुरंत उसके हाथ से रुमाल लेकर खुद को साफ किया और रुमाल लौटाने के बहाने से सम्राट को इस तरह देखने का नाटक किया मानो वो उसे पहली बार देख रही हो। जल्दी से बोली, आई एम सॉरी, आप कौन हैं? एक्चुअली मुझे लगा कि किसी फ्रेंड ने मुझे अपना रुमाल दिया है, सो सॉरी। वैसे आप कौन हैं? अपनी नफरत और अपने गुस्से को अंदर ही अंदर दबाकर रखने की उसने पूरी कोशिश की, हालांकि उसका दिल सामने खड़े इंसान का गला दबा देने को कर रहा था, क्योंकि वो वही इंसान था जिसने उसके बेटे को अगवा करने की कोशिश की थी। और कहीं ना कहीं आस्था को इस बात का पूरा यकीन भी था कि अरमान की जो यादें वापस गई थीं उसके पीछे भी इसी इंसान का हाथ था। ये सोचकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। लेकिन तुरंत ही राधिका ने ये देखा और राधिका व वंशिका दोनों ने एक साथ आस्था का हाथ पकड़कर दबा दिया। आस्था तुरंत खुद को संभालते हुए उनकी ओर देखती हुई बोली, ये कौन है आप? तभी सम्राट ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला, हेलो ब्यूटीफुल लेडी, मेरा नाम सम्राट है और मैं यहाँ एक मीटिंग के सिलसिले में आया था। जानबूझकर सम्राट ने इम्प्रेशन जमाने के लिए खुद को एक बिजनेसमैन बताया। सम्राट को देखते हुए आस्था ने कहा था, हेलो मिस्टर ठाकुर, रियल आपकी पर्सनैलिटी तो जबरदस्त है। जैसे ही आस्था ने इस तरीके से सम्राट की थोड़ी सी तारीफ की, सम्राट भी तुरंत आस्था से खुश होकर मुस्कुराया और उससे मुलाकात करते हुए बोला था, रियली मैंने आप जैसी ब्यूटीफुल लड़की कहीं नहीं देखी। सम्राट अपना खतरनाक रूप नहीं दिखाना चाहता था, वो नहीं चाहता था कि आस्था उससे डरकर भाग जाए। पहली बार किसी लड़की से उसे इस तरह बात करने का दिल कर रहा था। वो किसी भी हाल में उसे डराना नहीं चाहता था, बल्कि वो चाहता था कि ये लड़की खुद उससे बातें करे। इसी वजह से उसने भी उससे बड़े ही सलीके से बातें करना शुरू कर दिया था। आस्था ने आज फिर उसे बताया कि वो एक मेडिकल स्टूडेंट है और अभी कुछ दिन पहले ही अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ट्रिप के लिए ऑस्ट्रेलिया गई थी। इस तरह की बातें आस्था बड़ी आसानी से सम्राट से करने लगी थी। तब तक एंजल भी आस्था से थोड़ा साइड में हो गई थी ताकि वे दोनों आराम से बातें कर सकें और उन्हें किसी तरह का अनकंफर्टेबल महसूस ना हो। लेकिन इस पूरी बातचीत से बेखबर नहीं थे दो आदमी जिनकी जहरीली आग बरसाती आंखें लगातार आस्था और सम्राट को ही देख रही थीं। वे दो आदमी थे, एक का नाम था राजवीर जिंदल और दूसरा था द ग्रेट अरमान सिंघानिया। वहीं राजवीर ने तुरंत अरमान के कानों में सरगोशी करते हुए कहा था, देखा तुमने, तुम्हारी बीवी है ना ये, देखा किस तरीके से ये किसी पराये मर्द से ऐसे कपड़े पहनकर मिल रही है। औरतों पर भरोसा नहीं किया जाता, इसीलिए उन्हें 24 घंटे अपनी नजरों के सामने रखना चाहिए। किसी भी औरत को खुली छूट नहीं देनी चाहिए, समझ रहे हो ना मेरी बात। औरतों को अपने कब्जे में रखना चाहिए, क्योंकि औरतें बहुत ज्यादा बेवफा होती हैं। वो कब धोखा दे जाए किसी को पता नहीं चलता। जैसे ही लाजवीर ने इस तरह की बातें करनी शुरू की, अरमान की नसें तन गई थीं, खासकर वो हाथ देखकर जिस हाथ से आस्था ने सम्राट से हाथ मिलाया था। अरमान आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन राजवीर ने तुरंत उसका हाथ थामकर उसे रोक लिया और बोला था, इस वक्त जाकर अगर तुम अपनी बीवी को रंगे हाथ पकड़ोगे तो वो यही बहाना बना लेगी कि वो तो ऐसे ही क्लब घूमने आई थी और इस आदमी से बस यूं ही मिल रही थी। और तुम्हारी बीवी को तो ये भी नहीं पता कि उसके सामने खड़ा इंसान कौन है। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात। मेरी बात ध्यान से सुनो, हम इन पर नजर रखेंगे और जैसे ही वो कुछ गलत करने की कोशिश करेगी उसी वक्त उसे रंगे हाथ पकड़ लेंगे। उसके बाद सब कुछ तुम्हारे हाथ में होगा। अपनी बीवी के साथ क्या करना है ये तुम्हें तय करना होगा, और इस आदमी के साथ क्या करना है वो भी तुम देख लेना। ये कहकर राजवीर अरमान को वहां से अपने साथ लेकर चला गया था। वहीं आस्था को अचानक इस बात का एहसास हुआ मानो वहां कोई और भी मौजूद हो। उसने चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाई, लेकिन सम्राट बड़े ही ध्यान और बेख्याल से उसे बातें कर रहा था। उसके मन में एक अजीब सा सुकून था। पहली बार उसे किसी लड़की को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने का दिल नहीं कर रहा था। उसका दिल चाहता था कि ये लड़की खुद उससे प्यार करे और खुद ही उसके साथ चलने का फैसला करे। तभी सम्राट ने सबको बारी बारी से देखा और बोला था, अगर आप लोगों को बुरा न लगे तो आप सब इतने अच्छे लोग हैं, मैं आप लोगों के लिए कुछ छोटा सा करना चाहता हूँ, क्यों ना आप लोग कल शाम मेरे घर पर डिनर करें, बोलिए कैसा रहेगा। ये सुनकर आस्था चौंक गई और बोली थी, मिस्टर सम्राट आपको ज्यादा फास्ट नहीं चलना है, अभी तो हम अभी अभी मिले हैं, पहले आप मुझे खुद को जानने का मौका दीजिए, उसके बाद ही आप मुझे इन्वाइट कर सकते हैं।
अगर आस्था उस वक्त सीधे डिनर के लिए हाँ कर देती तो सम्राट के मन में शक पैदा हो सकता था कि कोई अजनबी इतनी जल्दी किसी के घर आने के लिए कैसे तैयार हो गई। लेकिन अब आस्था की ये बात सुनकर सम्राट जोर से हंस पड़ा था। उसे बिल्कुल भी आस्था पर किसी तरह का कोई शक महसूस नहीं हो रहा था, और वो तुरंत ही उसकी ओर देखते हुए बोला था, अरे इसमें जानने वाली कौन सी बात है, वैसे भी आप कौन से कॉलेज में पढ़ती हैं, पहले आप मुझे ये बताइए, अभी जान पहचान कर लेते हैं। ये बोलकर सम्राट ने जल्दी से कॉलेज की जानकारी पूछी, तब आस्था ने भी बिना देर किए अपने कॉलेज का नाम सम्राट को बता दिया। जैसे ही सम्राट ने कॉलेज का नाम सुना वो चौंक गया था और बोला, रियली आप उसी मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट हैं क्या? आपको नहीं पता कि आपके कॉलेज का जो इन्वेस्टर है वो एक्चुअली मैं ही हूँ? जैसे ही सम्राट ने ये कहा, आस्था ने जल्दी से हैरानी जताते हुए बोला था, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? तभी सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं खुद वहाँ नहीं गया था, मैंने अपने असिस्टेंट को वहाँ भेजा था, देखिए अब तो आपका मुझ पर यकीन करना बनता है। इस तरह सम्राट ने जल्दी जल्दी कुछ और बातें भी जोड़ दी, साथ ही उसने राजवीर का नाम लेते हुए असिस्टेंट और कॉलेज से जुड़ी बातें भी सामने रख दी। राजवीर ही पब्लिकली आस्था के कॉलेज को भारी भरकम फंड देने के लिए गया था, लेकिन जैसे ही सम्राट ने आस्था को उन सबकी फ़ोटोज़ दिखाई, आस्था पूरी तरह से चौंक गए थे। आस्था ने तुरंत ही कहा, सर मैं तो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आपको नहीं पता जब हमें पता चला था कि हमारे कॉलेज को किसी ने गोद ले लिया है तो आप सोच भी नहीं सकते कि हमें कितना अच्छा लगा था, आपकी वजह से हमारी फीस बहुत कम हो गई है और तभी तो हम थोड़ी सी सेविंग करके आज यहाँ पार्टी करने आ पाए हैं। आस्था ने पूरी एक्टिंग के साथ ये सब कहा। अब सम्राट के मन में आस्था को लेकर किसी तरह का कोई शक बचा ही नहीं था। वहीं दूसरी ओर सभी लड़कियाँ थोड़ी सी दूरी पर खड़ी ड्रिंक पीने का नाटक कर रही थीं और आपस में बातों का दिखावा भी कर रही थीं, लेकिन उनकी नज़रें पूरी तरह से आस्था और सम्राट पर टिकी हुई थीं। उन्होंने मन ही मन ठान लिया था कि अगर सम्राट ने ज़रा सी भी आस्था के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो सारी लड़कियाँ एक साथ उस पर टूट पड़ेंगी और उसे मार मार कर सबक सिखा देंगी। लेकिन यहाँ तो सम्राट बड़े ही सलीके और नज़ाकत से आस्था को ये यकीन दिला रहा था कि वो एक नंबर का जेंटलमैन है और उसे उससे घबराने या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो इसी तरह की बातें लगातार करता जा रहा था। ये सब सुनकर आस्था ही नहीं बल्कि सभी लड़कियाँ उसकी एक्टिंग की कायल हो गई थीं। तभी आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, सर आपने हमें इनवाइट किया है तो ये हमारे लिए ऑनर की बात है, हम आपके घर डिनर के लिए ज़रूर आएंगे। ये बोलकर आस्था ने मुस्कुराते हुए थोड़ी और इधर उधर की बातें की और फिर सब लोग एक साथ वहाँ से विदा ले लिए। बाहर निकलते ही सभी लड़कियाँ एकदम से गहरी गहरी और लंबी लंबी सांसें लेने लगी थीं।